समाचार सेवा प्रभाग प्रस्तुत करता है कार्यक्रम आज सवेरे।
यदि आप सूरज की तरह चमकना चाहते हैं तो पहले सूरज की तरह जलें। ये प्रेरणादायक पंक्तियां हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की। सुप्रभात, आकाशवाणी पर एक नई सुबह नई आशाओं के साथ हम एक बार फिर उपस्थित हैं आज सवेरे का नया अंक लेकर। आधे घंटे के इस कार्यक्रम में देश दुनिया के समाचार होंगे, महानगरों की खबरें होंगी, खेलों के मैदान की हलचल होगी, जानेंगे मौसम का हाल, इतिहास के पन्नों पर भी नजर डालेंगे और जानेंगे आज के दिन की विशेषता। उन विशिष्ट व्यक्तित्वों की भी बात करेंगे जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। आज सवेरे के संक में मैं हूं अलका सिंह और मेरे साथ हैं सायरा मुज्तबा। नमस्कार सायरा।
नमस्कार अलका, आदाब एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल आवर लिसनर्स हु हैव जॉइंड अस इन दिस वेरी वेरी फ्रेश एपिसोड ऑफ आज सवेरे। एंड अलका ने तो शुरुआत कर ही दी कि अगर सूरज की तरह आपको चमकना है तो सूरज की तरह जलना भी सीखें। दोज अनफॉरगेटेबल लाइन्स बाय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। Today we'll remember him in our tribute section because today is his birth anniversary. उनका एक और बहुत फेमस कोट है अलका, और क्योंकि अभी आज सवेर का वक्त है, सब लोग अपने ख्वाबों की दुनिया से जागे हैं, लेकिन अगर वो ख्वाब जिनको आप जागती आंखों से देखते हैं एंड यू विल वर्क टूवर्ड्स देम, देन उसका कहना ही क्या। सो एपीजे अब्दुल कलाम ऑल्सो सेड दैट ड्रीम 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 ड्रीम्स ट्रांसफॉर्म इन टू थॉट्स एंड थॉट्स result in action. So yes, as you all are pepped up and heading towards your work, towards that action of the day, here we bring you the action of the day and give you the perfect start to the day by bringing the latest news that are making headlines in the country and even international news. Apart from that, in our metro news section, janenge kya kuch khas hoga hamare metro news section mein, yani aapke apne shehar mein kya kuch ho raha hai. And of course, Alka has already told you what to look forward to in in other parts history, of the show. Yeah. But let's start with the headlines first.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नई दिल्ली में भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ आईटीयू के विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन WTSA 2024 और इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का उद्घाटन करेंगे। विश्व दूरसंचार मानक सम्मेलन संयुक्त राष्ट्र डिजिटल प्रौद्योगिकी एजेंसी के अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ के मानक कार्य का साक्षी सम्मेलन है। इसका आयोजन प्रत्येक 4 वर्षों में किया जाता है। आईटीयू के इतिहास में यह पहली बार होगा जब यह प्रतिष्ठित वैश्विक कार्यक्रम भारत और एशिया प्रशांत क्षेत्र में हो रहा है। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक कार्यक्रम है जो दूरसंचार, डिजिटल और आईसीटी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले 190 से अधिक देशों के 3000 से अधिक उद्योगपतियों, नीति निर्माताओं और तकनीकी विशेषज्ञों को एक साथ एक मंच पर लेकर आएगा। WTSA 2024 6G, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, IoT, बिग डेटा और साइबर सुरक्षा जैसी अगली पीढ़ी की महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के मानक भविष्य पर निर्णय लेने और चर्चा करने के प्रति प्रतिभागी देशों को एक मंच प्रदान करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करेगा। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। यह विश्वभर में प्रौद्योगिकी और दूरसंचार पारिस्थितिकी तंत्र में नवाचार, समाधान, सेवा तथा उद्योग, सरकार, शिक्षा, स्टार्टअप्स और अन्य मुख्य हितधारकों के लिए उन्नत सुपरिचित मंच बन चुका है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2024 में 120 देशों की भागीदारी हो रही है। इसमें लगभग 900 स्टार्टअप्स और 400 प्रदर्शक अपना प्रदर्शन करेंगे।
जम्मू एंड कश्मीर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा हैज इनवाइटेड नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर उमर अब्दुल्ला टू फॉर्म अ न्यू गवर्नमेंट इन द यूनियन टेरिटरी। द मूव कम्स अ डे आफ्टर द सेंटर रिवोक्ड प्रेसिडेंट्स रूल इन जम्मू एंड कश्मीर। Lieutenant Governor invited the National Conference Vice President to take oath as Chief Minister after Mr. Sinha received a letter from National Conference saying that Mr. Abdullah has been unanimously elected as the leader of the Legislature Party. The LG's emissary handed over the letter to Mr. Abdullah yesterday and informed him about the date and time of the swearing-in ceremony. The swearing-in ceremony will be held at the SKICC in Srinagar tomorrow at 11:30 a.m.
भारत ने कनाडा के कार्यवाहक उच्चायुक्त स्टीवर्ट रॉस व्हीलर सहित 6 राजनयिकों को निष्कासित कर दिया है। इन राजनयिकों से 19 अक्टूबर या उससे पहले भारत छोड़ने को कहा गया है। भारत ने कनाडा में अपने उच्चायुक्त और अन्य राजनयिकों और अधिकारियों को ये कहते हुए वापस बुलाया है कि उसे उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करने की वर्तमान कनाडा की सरकार की प्रतिबद्धता पर भरोसा नहीं है। इसी तरह के घटनाक्रम में कनाडा के प्रभारी उच्चायुक्त को कल नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय में बुलाया गया था। उन्हें बताया गया कि कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और अन्य राजनयिक और अधिकारियों को आधारहीन निशाना बनाना अस्वीकार्य है। उन्हें ये भी बताया गया कि उग्रवाद और हिंसा के माहौल में वर्तमान ट्रूडो की नेतृत्व वाली कनाडा सरकार के कार्यों से भारतीय राजनयिकों की सुरक्षा खतरे में पड़ गई है। भारत के खिलाफ उग्रवाद, हिंसा और अलगाववाद के लिए ट्रूडो सरकार द्वारा समर्थन के जवाब में आगे के कदम का अधिकार भारत के पास है। इससे पहले भारत ने कनाडा सरकार के उन दावों को पूरी तरह से खारिज कर दिया था जिनमें कनाडा में भारतीय उच्चायुक्त और कुछ अन्य राजनयिकों को एक मामले में जांच के दायरे में बताया गया था। इस संबंध में कनाडा सरकार को जवाब देते हुए विदेश मंत्रालय ने इसे आधारहीन आरोप बताते हुए कहा कि कनाडा की ट्रूडो सरकार की वोट बैंक की राजनीति का एजेंडा है।
External Affairs Minister Dr. S. Jayashankar will embark on a two-day visit to Islamabad today to attend the Shanghai Cooperation Organization or SCO Summit. The External Affairs Minister had earlier remarked that his Pakistan visit is for a multilateral event and he had ruled out bilateral talks. This will be the first high-level visit of an Indian foreign minister to the neighbouring nation in 9 years. Shanghai Cooperation Organization is a permanent intergovernmental international organization. It comprises of 9 member states, India, Iran, Kazakhstan, China, Kyrgyz Republic, Pakistan, Russia, Tajikistan and Uzbekistan. The SCO focuses on strengthening mutual trust among the member states, promoting their effective cooperation in politics, trade, economy, research, technology and culture.
नासा ने यूरोपा क्लीपर लॉन्च किया है जो किसी ग्रह मिशन के लिए बनाया गया अब तक का सबसे बड़ा अंतरिक्ष यान है। इस अंतरिक्ष यान का उद्देश्य ये जांचना है कि बृहस्पति के चंद्रमा यूरोपा में जीवन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां हैं या नहीं। इसमें बर्फ के मोटे बाहरी आवरण के नीचे छिपे हुए विशाल उपसतह महासागर पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग CAQM ने वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI के 234 पर पहुंचने के बाद पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान GRAP के चरण 1 को लागू किया है जो खराब श्रेणी में है। इसे देखते हुए GRAP के चरण 1 के अनुसार 27 सूत्रीय कार्य योजना आज सुबह 8 बजे से पूरे NCR में लागू की जा रही है। इस आशय का निर्णय CAQM उप समिति द्वारा लिया गया जिसने दिल्ली NCR की वर्तमान वायु गुणवत्ता का जायजा लेने के लिए कल बैठक की। कार्य योजना में NCR राज्यों के प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों और दिल्ली प्रदूषण और नियंत्रण समिति सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कदम शामिल हैं। इन कदमों में निर्माण और विध्वंस C&D गतिविधियों में धूल शमन उपायों पर निर्देशों का उचित कार्यान्वयन सुनिश्चित करना और नगर पालिका ठोस अवशिष्ट को नियमित रूप से उठाना शामिल है। CAQM ने कहा है कि वो स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहा है और आने वाले दिनों में नियमित आधार पर वायु गुणवत्ता परिदृश्य की समीक्षा करेगा।
And on to sports news, in the Women's T20 Cricket World Cup, New Zealand defeated Pakistan by 54 runs at the Dubai International Cricket Stadium last night to become the second team from Group A to advance to the semi-finals. Electing to bat first, New Zealand set a target of 111 runs before Pakistan. New Zealand scored 110 for 6 in the stipulated 20 overs. In reply, Pakistan team was bundled out for just 56 runs in 11.4 overs. With this result, Indian team has crashed out of the tournament.
News Magazine Program आज सवेरे में अब समय है महानगरों के समाचारों का, तो सबसे पहले बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई के समाचारों के साथ हैं सायरा।
Thanks Alka, let's start with शहरी चेन्नई। The Bureau of Indian Standards Chennai branch office celebrated the World Standards Day, where industry experts, government officials and other stakeholders took part. Speaking on the occasion, Deputy Director General Praveen Khanna said that standardization of a particular product and its quality was important. He said that the standards are contributing to sustainable development goals in a massive way. He also added that the Bureau has more than 10,000 standards club for school and college students and also has conducted more than 3,500 programs at grassroots level for Gram Panchayat members. Moving on to the city of Bengaluru. The Bengaluru Climate Action Cell, implementing the Bengaluru Climate Action and Resilience Plan, has embarked on an ambitious journey to reduce greenhouse gas emissions in Bengaluru. The Special Commissioner, Preeti Gehlot, who heads the Climate Action Cell, has issued a release that the Climate Action and Resilience Plan is implemented in coordination with various government departments, research organizations, civil society and industry. It has started an awareness campaign about the Climate Action Plan. It is also underscoring the need to restore open wells and promoting rainwater harvesting in parks and lakes. It is engaging local communities in tree plantation drives in the city. As on date, 80,000 saplings have been planted during the monsoon season in open spaces, avenues, lakes and parks. A new forum with the name Friends of Climate Action Cell is created to bring together many active citizens and organizations engaged in climate action. Over 500 organizations, academic institutions, resident welfare associations, social organizations and corporate entities have joined this new forum. So, Alka, we can say this is the need of the hour because hum sab jante hain ki climate action ka jo ek effect hai wo puri duniya mein dekhne ko mil raha hai. And I think I read an interview of a very famous environmentalist. He said that nature is so powerful that you don't say save nature because nature knows how to save itself. You save yourself because if we are going to fell trees, wo log ekdam se kuch, you know, ek pralay aayegi, you know, mankind will perish, but nature will reclaim the territory. So it's better that you... Probably we have to look after ourselves. That's why we have to protect nature.
बिल्कुल सायरा, नेचर जो है वो अगर हम अपना नेचर नहीं बदलेंगे तो नेचर हमें अपने नेचर को बदलने पे मजबूर कर देगी.
और करना चाहिए भी है ना. It's high time that we have to take action so that we can ensure the security of future generations, not just nature, because as I said, nature has the, it's so powerful, it will reclaim the earth.
वो तो supreme power है, लेकिन हम सोचते हैं कि शायद हम उससे ज्यादा powerful हो गए हैं.
Well, insan aadmi bulbula hai pani ka, that's all I can say. Moving on to Hyderabad, Telangana Women and Child Welfare Minister D. Anasuya Sitathakka has announced that backlog posts under the Persons with Disabilities PWD section will be filled soon and that the state government is trying to increase their reservation to 4% for the current 1%. She launched an online job portal, www.viklangulajobportal.telangana.gov.in, which is exclusively for Divyangs. The minister also gave joining orders for 10 employees recruited by her department. Speaking on the occasion, the minister said that those who register their profiles will get job offers based on their qualifications. An excellent move over there in Hyderabad. So, Alka, this was the buzz that I had from these three cities of Chennai, Bengaluru and Hyderabad. What is the latest that you have from Delhi, Mumbai and Kolkata?
Bilkul, Delhi ki baat kare, NCR, to सर्दियों के मौसम में होने वाले प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने बीते कल यानी 14 अक्टूबर से 1 जनवरी 2025 तक दिल्ली में पटाखों के निर्माण, बिक्री, भंडारण और इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगा दिया है. ये प्रतिबंध ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से पटाखों की बिक्री पर भी सख्ती से लागू होगा. इस निर्णय पर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने कहा कि पटाखों के प्रतिबंध के निर्णय के पीछे सरकार का लक्ष्य ये सुनिश्चित करना है कि दिल्ली की हवा सांस लेने योग्य बनी रहे. श्री राय ने दिल्ली की जनता से प्रदूषण के खिलाफ इस सामूहिक लड़ाई में सहयोग और समर्थन करने की अपील की है. वहीं दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने शहर में बढ़ते वायु और जल प्रदूषण को लेकर उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना से सर्वदलीय बैठक बुलाने का आग्रह किया है. श्री सचदेवा ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाया कि आने वाले दिनों में दिवाली और छठ जैसे दो बड़े त्योहार हैं, लेकिन सरकार शहर में प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है. श्री सचदेवा ने कहा कि दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक पिछले चार दिन में लगभग दोगुना हो गया है, लेकिन मुख्यमंत्री आतिशी इस पर चुप हैं. उन्होंने उपराज्यपाल से छठ की तैयारियों के लिए तुरंत हस्तक्षेप करने का आग्रह किया. वहीं दिल्ली पुलिस ने नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत इस महीने से अब तक 13,000 करोड़ रुपए कीमत के नशीले पदार्थ जब्त किए हैं. दिल्ली पुलिस ने इस कामयाबी पर गृहमंत्री अमित शाह ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में दिल्ली पुलिस को नशीली दवाओं की जब्ती के सफल अभियानों के लिए बधाई दी। उन्होंने कहा कि नशीली दवाओं और मादक पदार्थों के व्यापार के खिलाफ अभियान बिना किसी ढील के जारी रहेगा। श्री शाह ने कहा कि सरकार युवाओं को नशीली दवाओं के अभिशाप से बचाकर नशा मुक्त भारत बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। बात करें मुंबई की तो महाराष्ट्र राज्य सड़क परिवहन निगम ने सोमवार को दिवाली के त्योहार को देखते हुए लागू होने वाले प्रस्तावित 10% किराया वृद्धि को रद्द कर दिया है। ये निर्णय त्योहारों के दौरान राज्य परिवहन बसों में यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत के रूप में है। पहले संशोधित किराया 25 अक्टूबर से 24 नवंबर के बीच लागू होना था। राज्य के स्वामित्व वाली सार्वजनिक परिवहन निगम के सभी क्षेत्रीय प्रमुखों को एक परिपत्र जारी कर प्रस्तावित किराया वृद्धि के कार्यान्वयन को रोकने के लिए कहा गया है। और वहीं मौसम की भी थोड़ी सी पहले बात कर लें अगर मुंबई की, तो मौसम विभाग ने कल मुंबई और उसके पड़ोसी जिलों ठाणे, रायगढ़ और पालघर के लिए अगले 2 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 2 दिनों को में मुंबई के कुछ हिस्सों में तेज बारिश और आंधी तूफान आने की संभावना है, जिससे शहर में दक्षिण पश्चिम मॉनसून की वापसी सप्ताह के अंत तक टल जाएगी। लगभग पिछले सप्ताह से ही मुंबई में शाम के समय हल्की से मध्यम बारिश हो रही है। और कोलकाता की बात करें तो आज शाम कोलकाता के रेड रोड पर दुर्गा पूजा कार्निवल का आयोजन किया जाएगा। इस वर्ष लगभग 50 पूजा समितियां कार्निवल में हिस्सा ले रही हैं। ये पश्चिम बंगाल सरकार की पहल है। राज्य सरकार ने उत्सव की पूरी तैयारी कर ली है।
सो वेल, ये तो थी हमारे मेट्रो न्यूज की कुछ खबरें।
आज सवेरे आप सुन रहे हैं अलका और सायरा के साथ, और अब समय है मौसम का हाल जानने का। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दिल्ली, मुंबई, कोलकाता की। तो दिल्ली की बात करें तो आमतौर पर बादल छाए रहेंगे। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। वहीं मुंबई की बात करें तो वहां भी बादल छाए रहेंगे, मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 25 डिग्री और अधिकतम 34 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है। और वहीं जॉय सिटी कोलकाता की अगर बात करें तो वहां भी बादल छाए रहेंगे और बूंदाबांदी की संभावना है। न्यूनतम तापमान 26 और अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। तो सायरा, यहां पे तो तीनों जगह बादल छाए हुए हैं और हल्की बूंदाबांदी या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है।
यस, एंड द सेम गोज फॉर चेन्नई, बेंगलुरु एंड हैदराबाद। ऑल दीज 3 सदर्न सिटीज आर एक्सपेक्टेड टू हैव अ जनरली क्लाउडी स्काई। इन चेन्नई सम हैवी रेन इज एक्सपेक्टेड। द मिनिमम टेम्परेचर वॉज 24 डिग्री सेल्सियस, मैक्सिमम विल बी अराउंड 28 डिग्री सेल्सियस। एंड बेंगलुरु विल ऑल्सो हैव क्लाउडी स्काई विद हैवी रेनफॉल एक्सपेक्टेड ड्यूरिंग द डे टाइम। मिनिमम टेम्परेचर वॉज 25, मैक्सिमम विल बी 21। इन हैदराबाद अलॉन्ग विद क्लाउडी sky there will be one or two spells of rain or thunder showers. Temperature will hover between a minimum of 24 degrees celsius and a maximum of 33 degrees celsius.
और अब बात कर लें, इतिहास के पन्नों को जरा पलट लें और घटनाओं पर नजर डालें जो आज के दिन का इतिहास बन गई। आज 15 अक्टूबर है।
Yes, if we look at a history, at the historical events that took place, let's take you to the year 1932. The Tata Sons airline was started, which later became Air India. It was also India's first commercial airliner service. The route for the first flight carried airmail was from Karachi to Bombay, which is now called Mumbai, and then on to Madras, which is now Chennai. The flight was piloted by Jahangir Ratanji Dadabhai Tata himself. And we all know that, abhi recently Ratan Tata passed away, but the legacy of Tatas, they live on. Aur humne, in a tribute to Ratan Tata, I had written that jo naye Bharat ki ya modern India ka jo tasavvur hai, wo Tatas ke bina
bilkul unhone adhuri hai.
Bilkul, bilkul, absolutely.
Bilkul, aur 1949 ki baat kare to Tripura Rajya ko Bharat mein shamil kiya gaya tha. और वहीं 1998 की बात करें तो अफ्रीकी देश ट्यूनेशिया ने मिस्र के साथ राजनयिक संबंध समाप्त कर दिए थे। 1978 की बात करें तो सोवियत संघ ने पूर्वी कजाकिस्तान क्षेत्र में परमाणु परीक्षण किया था।
World Students' Day is being observed today throughout the globe. This day marks the birth anniversary of the 11th President of India, Dr. APJ Abdul Kalam. This day symbolizes the legacy of the People's President and encourages the love that he had for the younger generation. Dr. Kalam had said that to succeed in life and achieve results, you must understand and master three mighty forces, that is desire, belief and expectation. On this day, we bring you the historic words spoken by Dr. Kalam, our role model, who's the role model for children.
It is now time we create more role models from the present. I suggest that the members of our parliament and legislatures can shape the future of our children by becoming the good role models. Parliament and legislatures have a crucial role in giving the vision of the developed India and value-based polity.
And we opened the show with his beautiful lines, and we all know that he was a recipient of several prestigious awards, but the Bharat Ratna, which is the India's highest civilian honor, was also conferred on him.
बिल्कुल. और 1998 की बात करें तो गरीबी उन्मूलन के लिए भारत की फातिमा बी को संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया. वहीं 2006 में संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तर कोरिया पर प्रतिबंध लगाया और 2008 में रिजर्व बैंक ने सीआरआर में 1% की कटौती की घोषणा की.
And Talka, if today is also another interesting day, and I'll just ask you a question. COVID में सबसे ज्यादा हम लोग क्या कर रहे थे?
आराम से बैठे हुए थे
और बार बार हाथ धो रहे थे. सो टुडे ऑल्सो मार्क्स द ग्लोबल हैंड वॉशिंग डे, विच इज अ डे डेडिकेटेड टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड अंडरस्टैंड अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ वॉशिंग हैंड्स विद सोप एज एन इफेक्टिव एंड अफोर्डेबल वे टू प्रिवेंट डिजीजेस एंड सेव लाइव्स. During the recent COVID times, as I said, that hand washing became a crucial practice in our daily lifestyle. And I'm sure after COVID, ये सबकी एक habit बन गई है कि हम लोग एक दूसरे को देखते रहते हैं कि अच्छा उसने वो चीज छुई है तो अभी हाथ धोया है कि नहीं.
देखिए सारा, ये वैसे भी संस्कारों की बात होती है, क्योंकि हम भारतीय संस्कृति की बात करें या अन्य कहीं भी बात करें तो हम जब भी भोजन से पहले कम से कम
yes, of course.
हाँ जरूर धोते हैं, या हम कोई भी काम करते हैं या घर जाते हैं तो सबसे पहले जो अगर ये प्रैक्टिस आप भूल जाती हैं
right.
तो हमें क्या है कि ये छोटी छोटी सी चीजें जो कि हमारे जन्म के साथ हम एक तरह से जब हम करना शुरू करते हैं
right.
तो हम करते हैं, लेकिन जब ये हम चीजें भूल जाते हैं ना तो हमें उस समय याद दिलानी पड़ती है
yeah.
कि आपको ऐसा करना होगा.
आई मीन वॉशिंग हैंड्स बिफोर फूड इज ऑफकोर्स नोन प्रैक्टिस, बट आई थिंक वॉट कोविड टॉट अस कि अगर किसी ने दरवाजा भी छुआ है तो आपको हाथ धोना है, बिकॉज बैक्टीरिया कैन एंटर थ्रू नॉट जस्ट थ्रू द माउथ बट ऑल्सो थ्रू द रेटिनाज.
बिल्कुल. और अब उन विभूतियों की बात कर लें जो आज के दिन इस दुनिया में आए या जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा. तो सबसे पहले हम याद कर रहे हैं स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारी की प्रमुख सहयोगी दुर्गावती देवी, जिन्हें दुर्गा भाभी के नाम से भी जाना जाता है. और आज इनकी पुण्यतिथि है. इनका जन्म 7 अक्टूबर 1907 को इलाहाबाद में हुआ था. प्रसिद्ध क्रांतिकारी भगत सिंह के साथ इन्हीं दुर्गावती देवी ने 18 दिसंबर 1928 को भेष बदलकर कलकत्ता मेल से यात्रा की थी और चंद्रशेखर आजाद के अनुरोध पर द फिलॉसफी ऑफ बम दस्तावेज तैयार करने वाले क्रांतिकारी भगवती चरण बोहरा की पत्नी दुर्गावती बोहरा क्रांतिकारियों के बीच दुर्गा भाभी के नाम से प्रसिद्ध हुई. और सन 1927 में लाला लाजपत राय की मौत का बदला लेने के लिए लाहौर में बुलाई गई बैठक की अध्यक्षता भी इन्होंने की थी और आज ही के दिन 1999 में इनका निधन हो गया.
Today we are also remembering a very, very renowned poet, writer, composer and sketch artist of the Hindi language. In fact, he is one of the four major pillars of the Chhayavad period in Hindi literature. Yes, we are remembering Suryakant Tripathi Nirala on his death anniversary.
बिल्कुल. आपने सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात की तो उन्हें साहित्य के बागी और समाज के त्यागी के रूप में जाना जाता है. वो कवि, गीतकार, उपन्यासकार, निबंधकार और कहानीकार थे और आज उनकी पुण्यतिथि है. इनका जन्म 21 फरवरी 1896 को बंगाल के मेदिनीपुर में हुआ था, अतः इनके साहित्य पर बंगाल का छाप देखा जा सकता है. मूलतः इनका पैतृक घर जो है वो उत्तर प्रदेश के उन्नाव में है और छायावाद युग के प्रवर्तक निराला ने हिंदी, अंग्रेजी, बांग्ला और संस्कृत भाषा में भरपूर लिखा. हिंदी काव्य क्षेत्र में निराला का पदार्पण मुक्त वृत्त के साथ हुआ और वे इस वृत्त के प्रथम प्रस्तुतकर्ता थे और वास्तव में निराला की उद्गम भावधारा को छंद के बंधन बांध नहीं सकते थे, उन्होंने परिमल की भूमिका में लिखा है कि मनुष्यों की मुक्ति की तरह कविता की भी मुक्ति होती है। मनुष्य की मुक्ति कर्म के बंधन में छुटकारा पाना है और कविता मुक्त छंदों के शासन से अलग हो जाना है। और उनके जो सारा जो शब्द थे ना, वो हमारे सामने चित्र की तरह होते थे। जैसे उन्होंने एक जगह लिखा है, आपने भी पढ़ा होगा, हम सबने पढ़ा है, कि वो आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता, पेट पीठ दोनों मिलकर हैं एक, चल रहा लकुटिया टेक, मुट्ठी भर दाने को भूख मिटाने को, मुंह फटी पुरानी झोली की फैलाता, वह आता दो टूक कलेजे के करता, पछताता पथ पर आता। और वहीं सरोज स्मृति में उन्होंने लिखा कि मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुखी जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। तो उन्होंने जितना कुछ लिखा और इतना अथाह था उनका वो, और 15 अक्टूबर 1961 को अपनी यादें छोड़कर निराला इस लोक को अलविदा कह गए।
In fact, let's quickly tell our listeners that he actually revolutionized Hindi literature, especially poetry, by pioneering the use of free verse, becoming the first Hindi poet to do so. Yes, absolutely. And we all know that he was not just a revolutionary as a master of his art, but also in his thoughts. And he was very, you know, he had a tilt towards socialism. And this is his kavita, which is "Jald jald pair badhao, aao aao." आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी, पाठशाला धोबी भासी तेली खोलेंगे अंधेरा का ताला, एक पाठ पढ़ेंगे टाट बिछाओ, यहां जहां सेठ जी बैठे थे बनिए की आग दिखाते हुए, उनके ऐठाए ऐठे थे धोखे पर धोखा खाते हुए, बैंक किसानों का खुलवाओ, सारी संपत्ति देश की हो, सारी आपत्ति देश की बने, जनता जातीय वेश की हो, वाद से विवाद ये ठने, काटा काटे से कढ़ाओ। सो वेरी रेवोल्यूशनरी थॉट्स एज वेल।
बिल्कुल, और उनके विषय में एक बड़ी रोचक जानकारी आपसे शेयर करूंगी कि निराला एक जगह स्थिर होकर कविता पाठ नहीं करते थे, और एक बार एक समारोह में आकाशवाणी को उनकी कविता का सीधा प्रसारण करना था, तो उनके चारों ओर माइक लगाए गए थे, पता नहीं वे घूम घूम कर किस कोने से कविता पढ़े। और प्रमुख रचनाओं की बात करें तो परिमल, गीतिका, तुलसीदास, जो कि एक खंड काव्य है, ये प्रसिद्ध हैं।
राइट, एंड नाउ एज द शो इज रैपिंग टुवर्ड्स 7, 8 o'clock, हम लोग क्विकली रिमेम्बर करें एक बहुत ही दिग्गज पर्सनालिटी को, हु हैज बीन अ वेरी वेरी एक्सलेंट कंपोजर। इनफैक्ट द डुओ ऑफ शंकर जय किशन, उनके बिना तो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के कुछ मेमोरेबल सॉन्ग्स हम लोग को मिलते ही नहीं, इजंट इट?
बिल्कुल, आज हम याद करें सुप्रसिद्ध संगीतकार शंकर सिंह रघुवंशी को, जिन्हें हम शंकर जय किशन के शंकर के रूप में याद कर रहे हैं। फिल्मों में भारतीय शास्त्रीय संगीत को सशक्त करने में इस जोड़ी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। October 15, 1922 को जन्मे शंकर के पिता राम सिंह रघुवंशी मूलतः मध्य प्रदेश के थे और काम के सिलसिले में हैदराबाद में बस गए थे। शास्त्रीय संगीत, लोक संगीत और पश्चिमी बीट खूबसूरत प्रयोग इन्होंने इसके किए, और इन्होंने फिल्म संगीत में भाव और लय को स्थापित करने में ऑर्केस्ट्रा का भी भरपूर उपयोग किया, जो पहले केवल फिलर के रूप में इस्तेमाल किया जाता था। और सायरा 1949 की बरसात फिल्म एक ऐसी फिल्म थी जिसके बाद ऐसी झड़ी लगी इनके संगीत की, जो कि 1987 तक जारी रही।
तो उस झड़ी का क्यों ना हम लोग भी एक नमूना अपने लिसनर्स को सुनवाए। वी हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्यूटीफुल मेडली, और ये तो एक जखीरा है, वी डोंट नो कि कौन क्या चीज छोड़े क्या पकड़े, बट वी ट्राई टू इनकॉर्पोरेट द बेस्ट सॉन्ग्स ऑफ शंकर जय किशन।
ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का शुरू, तू न पहचाने तो है ये तेरी नजरों का कसूर। जनक जनक तोरे बाजे पायलिया, प्रीत के गीत सुनाए पायलिया।
मेरे मन की गंगा और तेरे मन की जमुना का बोल राधा बोल संगम होगा के नहीं
नहीं कभी नहीं
हाँ जिंदगी एक सफर है सुहाना यहाँ कल क्या हो किसने जाना।
और सायरा घड़ी की सुइयां कह रही हैं कि अपने श्रोताओं से हम अनुमति लें तो स्वस्थ रहिए मस्त रहिए और सुनते रहिए
आकाशवाणी।
बिल्कुल आकाशवाणी।
स्टे ट्यून्ड फॉर कमिंग अप नेक्स्ट इज समाचार प्रभात हिंदी न्यूज बुलेटिन फॉलोड बाय मॉर्निंग न्यूज इन इंग्लिश एट 8:15 AM। थैंक्स फॉर ट्यूनिंग लिसनर्स, हैव अ ग्रेट डे अहेड।
अलका सिंह और सायरा मुज्तबा को अनुमति दीजिए।
नमस्कार।